नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और दोनों देशों के लिए लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता एफटीए सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने आज टेलीफोन पर श्री लक्सन से बातचीत की। श्री लक्सन की इस वर्ष मार्च में भारत यात्रा के दौरान इस समझौते के लिए वार्ता शुरू हुई थी। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में एफटीए का संपन्न होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड साझेदारी नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में न्यूजीलैंड से $20 अरब से अधिक के निवेश का स्वागत करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लक्सन ने कहा कि आज न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा दिन है।
आज न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा दिन है। हमने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। ये वर्षों की मेहनत के बाद हासिल की गई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस समझौते के तहत 95% निर्यात पर शुल्क हटाए जाएंगे, जिससे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के 1.4 अरब उपभोक्ताओं के बड़े बाजार तक पहुँच मिलेगी।
केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि ये समझौता व्यापार को बढ़ावा देकर किसानों, उद्यमियों, छात्रों, महिलाओं और नवोन्मेषकों के लिए विभिन्न अवसर सृजित करेगा।
करीब 5,000 पेशेवर, जिनमें योग प्रशिक्षक, शेफ, आयुष क्षेत्र के विशेषज्ञ, आईटी और शिक्षा से जुड़े शिक्षक तथा नर्सें शामिल हैं, को न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए प्रोफेशनल वीजा मिलेगा। इसके अलावा हमने 180 क्षेत्रों को भी खोला है, जिससे पर्यटन, आईटी, टेलीकॉम और ऑडियो विजुअल जैसे क्षेत्रों में भागीदारी के नए अवसर प्राप्त होंगे। टेलीकॉम, ऑडियो
विजुअल। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि सरकार की अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की कोई योजना नहीं है और सरकार का एकमात्र और सर्वोपरि उद्देश्य अरावली पर्वतमाला को संरक्षित करना है। नई दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली के संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित किया है। श्री यादव ने कहा कि इस परिभाषा के आधार पर राज्यों को कड़े नियम बनाने होंगे।
अरावली और अरावली रेंज को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इनसे सर्वेयर ऑफ इंडिया, इन सबसे इनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से जिस डेफिनेशन को निर्धारित किया है उसमें राज्यों को स्ट्रिक्टर रूल बनाने की आवश्यकता होगी। और 90% पार्ट जो है उसमें तो आप माइनिंग एक्टिविटी से बाहर ही हो जाओगे। मैं आपको कोट अनकोट कह रहा हूं, कहीं भी कह देना, 90% में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शक्ति फेलोशिप की शुरुआत की है। इसमें भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर शोध के लिए युवा छात्रों और शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
इस फेलोशिप का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, लिंग आधारित हिंसा, कानूनी अधिकार और न्याय, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण और श्रम भागीदारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक शोध को प्रोत्साहित करना है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त किए हुए 21 से 30 वर्ष के नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने के शोध अध्ययन के लिए 1,00,000 रूपये का शोध अनुदान दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज घने कोहरे के कारण कई उड़ानों और रेलगाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है। दिल्ली हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। रेलवे के दिल्ली मंडल ने बताया है कि आज दिल्ली आने वाली कई रेलगाड़ियों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि लगभग 17 रेलगाड़ियां 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।